नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ऋण सीमा तय करने के लिए प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ बातचीत के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है। गौरतलब है कि बाइडेन और मैकार्थी के बीच देश की ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर रविवार को अंतिम सहमति बन गई है। कई कट्टर रूढ़िवादी इस समझौते की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार अपने खर्च में कटौती करे। बाइडेन ने मेमोरियल डे की छुट्टी का कुछ समय सांसदों को फोन कर समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया। बाइडेन ने सोमवार को वॉशिंगटन से डेलावेयर स्थित अपने घर के लिए रवाना होने के बाद संवाददाता से कहा, मैं इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैंने कई सदस्यों से बात की है। इसी बीच मंगलवार को अमेरिकी संसद की हाउस रूल्स कमेटी इस पैकेज पर विचार करेगी और बुधवार को मतदान के लिए इसे पूर्ण सदन में भेजेगी। बाइडेन और मैकार्थी संघीय खर्च को सीमित करने और अमेरिका को संभावित चूक से बचाने के लिए समझौते पर तैयार हो गए हैं। हालांकि इस समझौते तक पहुंचने के लिए जो रियायतें या शर्तें तय की गई हैं उससे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पक्षों के नाराज होने का खतरा है। वार्ताकारों ने रिपब्लिकन की खाद्य टिकट के प्राप्तकर्ताओं के लिए काम की बढ़ती जरूरतों पर सहमति जताई है, जिस पर डेमोक्रेट ने हंगामा खड़ा किया है। 5 जून की समय सीमा से पहले संसद की मंजूरी के लिए दोनों पक्षों का इस समझौते पर सहमत होना जरूरी है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के पारिवारिक फाउंडेशन मूर्ति ट्रस्ट से रीच टू टीच फाउंडेशन को 5 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। रीच टू टीच के बयान के अनुसार ये अनुदान संस्थान के पूर्वोत्तर राज्यों में स्कूलों में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए है। मूर्ति ट्रस्ट से मिला अनुदान कार्यक्रम को शुरुआती समर्थन प्रदान करेगा और रीच टू टीच को एक भरोसेमंद कार्यक्रम देने की क्षमता को मजबूत करेगा। रीच टू टीच मुख्य रूप से राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के साथ भागीदारी करता है और समुदाय के स्तर पर संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करता है। फिलहाल फाउंडेशन अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहा है। इसके लिए उसने नीति आयोग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। वो इसका विस्तार मेघालय और त्रिपुरा में करने पर विचार कर रहा है। मोबाइल फोन और अन्य उत्पाद बनाने वाली शाओमी ने 2025 तक मूल्य के हिसाब से स्मार्टफोन में उपयोग होने वाले उपकरणों का आधा हिस्सा स्थानीय रूप से लेने की योजना बनाई है। शाओमी इंडिया के अध्यक्ष मुरली कृष्णन बी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कंपनी के हेडफोन ईयरफोन खंड में प्रवेश की भी घोषणा की। इसका उत्पादन नोएडा में ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कारखाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अपने स्थानीय रूप से जो उत्पाद खरीदते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। पहले से ही गैर सेमीकंडक्टर BOM का 35% स्थानीय रूप से ही लिया जा रहा है। हम जब संभव होगा सेमीकंडक्टर लेने पर भी विचार करेंगे। हम 2025 से स्थानीय स्तर पर मूल्य के हिसाब से कलपुर्जों का 50% तक स्थानीय स्तर पर लेने की उम्मीद कर रहे हैं। मुरली कृष्णन ने कहा कि कंपनी स्थानीय तौर पर कलपुर्जों का उपयोग बढ़ाने पर गौर करेगी। उन्होंने कहा, इस साल के अंत तक हम स्थानीय स्तर पर स्मार्टफोन डिस्प्ले लेने पर विचार करेंगे। शाओमी की वर्तमान में स्मार्ट टेलीविजन के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनियों डिक्सन टेक्नोलॉजी और रेडियंट के साथ भागीदारी है। इसके अलावा कंपनी ने टीवी रिमोट के लिए लाइट के साथ साझेदारी की है। सरकार ने कुछ यूरोपीय देशों को बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसियों द्वारा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को 6 महीने के लिए समाप्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सोमवार को कहा कि वो 17 अगस्त 2022 की अधिसूचना में संशोधन कर रहा है। संशोधन के अनुसार सिर्फ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों मसलन आइसलैंड, लीस्टेस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन को चावल के निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रमाणन की जरूरत होगी। अन्य यूरोपीय देशों को चावल निर्यात के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले DGFT ने कहा था कि इस साल जनवरी से इन देशों को निर्यात के लिए प्रमाण पत्र जरूरी होगा। सरकार ने सोमवार को अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बड़ी राहत दी। इसके तहत इन परियोजनाओं को 25 साल के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क में पूरी तरह से छूट मिलेगी। बिजली मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये छूट 31 दिसंबर 2032 तक चालू होने वाली परियोजनाओं को मिलेगी। इसके साथ ही हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं के लिए ISTS से छूट 30 जून 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2030 की गई है। बयान के अनुसार ये निर्णय अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के साथ हरित हाइड्रोजन अमोनिया परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा भंडारण से जुड़ी परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2032 तक चालू होने वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को ISTS शुल्कों से पूरी तरह से छूट दी गई है। ये छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 साल के लिए है। मंत्रालय के बयान के अनुसार जो अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं 1 जनवरी 2033 तक चालू होंगी उन्हें अलग अलग दर से ISTS शुल्क देना होगा। इससे पहले सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को 30 जून 2025 तक छूट दी गई थी। अब अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में ये छूट अलग अलग होगी। जो परियोजना 31 दिसंबर 2032 तक पूरी होंगी उन्हें ISTS शुल्क से पूरी छूट मिलेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।